ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा?
क्या हो गया? देखो दरवाजा खुल भी रहा है कि नहीं,
पता नहीं, चेक करके रहो जल्दी। क्यों नहीं रही आखिर?
पता नहीं क्या
हो गया इसको।
अरे खुदा की कसम, अगर आप लोग अंदर आए तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी, झूठ भी नहीं बोल रही हूँ।
बीता बेटा, हमें अंदर आने दो, हम बातचीत करके हल कर लेंगे मसला।
अम्मी जान आप जाइए अब्बू के पास, मैं भी उससे बात करती हूँ।
आखिर हुआ क्या है?
कसम से मुझे भी नहीं पता, इससे बात करके बताती हूँ ना। आप जाइए अब्बू को संभालिए, बेचारे की हालत देखिए क्या हो गई है, जाइए उससे जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगी।
मुझे कोई परवाह नहीं है, 100 साल भी किसी के साथ बात न करे, जब से बड़ी हुई हमारा सत्यानाश करके रख दिया इसने।
ठीक है आप जाइए, वरना अब्बू की तबीयत खराब हो जाएगी, जाइए ना।
देखो नाजनीन, मैं अहमक नहीं हूँ, ये जरूर किसी को चाहती है जो अपने साथ ऐसा काम कर रही है।
अम्मी जान ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए तो, आप बैठ जाइए, मैं उससे बात करती हूँ ना, यकीन करें मैं आपकी मुश्किल दूर कर दूंगी।
इसको कुछ तो है, कुछ तो हो गया है इसको, जरूर
बैठिए बैठिए। पिता दरवाजा खोलो, कसम से अगर अब्बू को कुछ हुआ ना तो तुम जिम्मेदार हो, दरवाजा खोलो।
कभी जब घर जल्दी घर आते हो तो ऐसा हंगामा खड़ा कर देते हो।
बेटा ये क्या कर रही हो आखिर?
फिर क्या हुआ है?
तुम्हारी कसम मुझे कुछ भी नहीं पता।
तुम कल खुद क्यों रोई थी?
ऐसे ही दिल तंग पड़ गया था।
बेटा दरवाजा खोलो।
हैरान हूँ कि मैंने कहाँ गलती की है, किस चीज की सजा भुगत रहा हूँ।
ऐसा मत कहो यूसुफ, तुमने सिर्फ हमारी मदद की और हमें सपोर्ट किया है हमेशा।
अब सोच रहा हूँ कि कहीं न कहीं तो गलती हुई है।
मैंने कहा था ना कि सर्जरी के लिए फिर से पैसा मत दो, ये सिर्फ यही सब करना चाहती है।
अगर पैसा न देता और कुछ और पेश आता तो दुनिया का बदतरीन बाप कहलाता, जो सिर्फ पैसे को अहमियत देता है और अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। मैंने हमेशा जिंदगी में कोशिश की है कि आपको किसी चीज की कमी ना हो, ये था इसका नतीजा।
यूसुफ साहब गलती यहीं पर है, अगर बच्चों को तमाम सहूलियात दी जाए तो इस तरह हो जाते हैं।
खोल दो,
दरवाजा खुल गया।
यूसुफ रुक जाओ, नाजनीन को उससे बात करने दो।
मैं पढ़ाई भी करता था और अपने वालिद का हाथ भी बटाता था। जब मेरे वालिद फौत हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके लिए वो सब कुछ नहीं किया जो मैं कर सकता था। नाजनीन, बेटा क्या हुआ?
जल्दी कहो ना क्या हुआ है।
उसने अपनी कुछ तस्वीरें नेट पे डाल दी और अब पछता रही है।
क्यों, भला कैसी तस्वीर दी है?
कुछ नहीं, इसको अपने सर पे रख के और फिर कुछ अजीब गरीब तस्वीरें लेकर उनको नेट पे डाल दिए।
क्यों, क्या काम इंसाए हैं?
कुछ नहीं, बस इधर उधर की फजूल बातें।
क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि क्या लिखा है?
मसलन लिखा है दो खोपड़ी वाली, या बस यही सब फजूल बातें, और कुछ लोग हंसे हैं, बस उसको गुस्सा आ गया और उठा के अपना लैपटॉप तोड़ दिया।
अच्छा किया है, जो इंसान अपनी शख्सियत गुम कर दे उसके साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए।
ये कौन कमीना है कि जिसके लिए उसने अपना होलिया बिगाड़ दिया और अपनी तस्वीर इंटरनेट पे दी है?
अरे कोई भी नहीं है, मुझे यकीन है कोई भी नहीं है।
जाओ जाओ इस लड़की से कह दो कि जो इंसान तुम्हें तुम्हारी शक्ल की वजह से चाहता है, कल को तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की देखकर तुम्हें दुत्कार देगा।
मैंने कहा लेकिन वो सुनती ही नहीं है, उसके अखलाक ऐसे नहीं है कि दूसरों की बातें सुने। अब्बू अम्मी आप लोग भी बस छोड़ देना।
सच सच बताओ क्या हुआ है?
कसम से सच यही है जो मैंने बताया, बस।
बेहिजाब तस्वीरें अपलोड किया है?
अम्मी अब कैसी बात कर रही हैं? उसने स्कार्फ के साथ लिए हैं, बस इसको अपने सर पे रखा है जिसकी वजह से सर बड़ा लग रहा है, और लोगों ने अजीब अजीब कमेंट्स डाले हैं जो उसको बुरा लग गया। मिता ने कहा कि मेरी तस्वीर को अपने प्रोफाइल से सब डिलीट कर दें, लेकिन रोज उठ के देखते हैं कि तस्वीर किसी और साइट पे आई हुई है और गुस्सा आ जाता है।
तो खुद क्यों अपनी तस्वीरें नहीं मिटाती?
अम्मी जान ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तस्वीर अब नेट पे यहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई है, अब ये चाहे या ना चाहे उसको बर्दाश्त करना है।
ऑस्ट्रेलिया तक क्यों?
امی میرا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، لوگوں نے اس تصویر کی کاپیاں بنائی ہیں اور بس اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ امی اب آپ پہ بس کرے نا۔ امی
یوسف کہاں جا رہے ہو؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں جناب؟
جی شکریہ
جناب، ذرا ایک زحمت کر کے یہ دیکھیے اس میں بیلنس ہے یا نہیں۔
جی ہے۔
تو مہربانی کر کے مجھے ایک ٹرانسفر رسید دے دیجیے، میں اس کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہوں گا۔
جی بالکل، یہ لیجیے، اس کو فل کر دیجیے۔
بہت بہت شکریہ۔ آج 20 تاریخ ہے؟
جی جی آج 20 تاریخ ہے۔
السلام علیکم دادا جان۔ السلام علیکم پرستو۔
وعلیکم السلام بیٹا۔ وعلیکم السلام،
آپ کیسی ہیں؟ کیسے آپ دادا جان؟ آپ ٹھیک ہیں؟
جاؤں بیٹا،
ماشاء اللہ
ٹھیک ہو؟
آپ کیسے؟
جلدی واپس آئے۔
الحمد للہ سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں۔ شالچی کے دونوں چیک کیش ہو گئے ہیں، مل گئے پیسے
دونوں؟
ہاں بالکل دونوں،
اللہ کا شکر۔
ہاں بیٹا، اب کیا ارادے ہیں؟ ورک شاپ کو خالی کرنا پڑے گا۔
فی الحال ایک مہینے کا ٹائم ہے میرے پاس۔
دیکھو بیٹا، میں چاہتا ہوں تم آئندہ بھی اس احمد میاں کا خیال رکھو۔
جی دادا جان، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ورک شاپ کو دینے سے پہلے کوئی اور جگہ خرید لوں گا، احمد چچا کو میں وہاں پہ لے جا کے سیٹ کر دوں گا، آپ بے فکر۔
میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ، نئے ورک شاپ میں کون سا کاروبار چلانا چاہتے ہو؟
یہی اپنا کاروبار دادا جان، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ اپنے ورک شاپ کو چلانا چاہتا ہوں۔
خدا کا شکر،
کہیں جانا نہیں، میں چائے لے کے آتی ہوں۔
ٹھیک ہے، دادی جان کہاں ہے؟
روٹی لینے گئی ہے۔
دادا جان، ارے احمد چچا کہتے ہیں کہ کس زمانے میں ہمارے ورک شاپ کے جوتے بازار میں بہت چلتے تھے اور حمید چچا بھی بہت اچھے جوتے سیتے تھے۔
ہاں بہت بڑھیا، مجھے یاد ہے کہ اس کے ایک دوست نے انہی جوتوں میں سے جو لمبے سے ہوتے ہیں نا، کیا نام ہے ان کا؟
ہاں ہاں لانگ شوز، ہاں ہاں یہی لانگ شوز اس نے اٹلی سے خریدا تھا، بہت خوبصورت تھا۔
حمید نے رات کو بیٹھ کر اپنے لیے اس طرح کا ایک جوتا بنایا جو اٹلی والے سے زیادہ خوبصورت تھا۔ 3 ہفتے میں 100 سے زیادہ سیٹ بک گئے۔
واہ بھائی واہ۔
ہاں اگر اسی وقت اس کام کو جاری رکھتا تو اس کے حالات بہت بہتر ہو جاتے، لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک اس کام سے دل اچاٹ ہو گیا۔
کیوں؟
نہیں معلوم، شاید میرا بھی قصور تھا، کیونکہ میں اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتا تھا، اس کی بہت تعریفیں کرتا تھا۔ جانتے ہو زیادہ تعریف انسان کے لیے زہر ہے، امام علی فرماتے ہیں جس انسان کو تباہ کرنا چاہتے ہو اس کے سامنے اس کی تعریف کرو۔
دادا جان کیا ہوا کہ آپ ان سے الگ ہونے پہ راضی ہو گئے؟
دیکھو کچھ عرصے کے بعد اس کو اس کام میں شرم آنے لگی، وہ جوتے سینا نہیں چاہتا تھا، اگرچہ شادی کا خرچہ اسی کام سے حاصل کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کام سے جی بھر گیا۔ مسلسل ملازمین سے لڑتا تھا، دیر سے آتا تھا، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ مجبوراً اس کا حصہ دیا اور کہا جاؤ جو کرنا چاہتے ہو۔
اور نئے کام میں انہوں نے کیا کیا؟ کیا کامیاب ہوئے ہو اپنے کام میں؟
دیکھو انسان جو بھی نیا کام شروع کرتا ہے اگر اس میں ماہر نہ ہو تو شکست کھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو افراد اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، افسوس کہ وہ بھی سب غلط لوگ تھے، ان کی وجہ سے بھی مسئلہ بن گیا اور اسے نقصان ہو گیا۔
اچھا
ہاں بیٹا۔
دادا جان آپ پریشان نہ ہوئیے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کل میں ہی چچا حمید واپس آ جائیں گے۔
انشاءاللہ انشاءاللہ۔
میں تو توبا بیٹی کی ولادت پر بہت زیادہ خوش ہوں۔
ہاں خدا نے ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، تمہیں خوش ہی ہونا چاہیے۔
دادا جان آپ کب اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوئے؟
قسمت کے دائرے میں ہم تسلیم کا نقطہ ہے، جو اس کی ذات چاہے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ میری زندگی کے خوبصورت لمحے ایک بہت بڑی پریشانی کے بعد رونما ہوئے۔ جب تمام لوگ اس گھر سے گئے تو حمید ناراض ہو کے چلا گیا۔ ہاں، مسعود اور ہما ہمارے پاس آئے تاکہ ہم تنہا نہ ہو۔ ہمیں بھی ان کی عادت ہونے والی تھی کہ مسعود نے اچانک محاذ پر جانے کا ارادہ کیا اور یہ گھر دوبارہ سنسان ہو گیا۔ ہمیشہ اسی کا منتظر رہا۔ انتظار کی انہی ایام میں ایک دن جب میں صحن میں وضو کرنے جا رہا تھا، اچانک کسی نے گھنٹی بجائی۔
السلام علیکم نعمت صاحب۔
وعلیکم السلام حاجی حسین، آئیے آئیے، خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ، آئیے۔
تم ٹھیک ہو؟
اللہ کا شکر ہے۔ حاجی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟
مولا کا کرم ہے۔
حاجی صاحب میں آیا ہوں آپ کو خبر دینے۔ کاش کہ میری جگہ کوئی اور خبر لاتا۔
کیسی خبر؟
حاجی صاحب آپ کے داماد مسعود، مسعود
مسعود کو کیا ہو گیا ہے؟
ابھی ابھی مسجد میں اس کی شہادت کی خبر آئی ہے، مجھے آپ کو بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ یا آپ اس کی بیگم دونوں جا کے ان کے والدین کو اطلاع دے دیں۔ اطلاع دے دیں۔
تو آپ نے ہما پھوپھی کو مسعود پھوپھا کی شہادت کی خبر دی؟
نہیں، حاجی حسین سے کہا تھا کہ میں خود ہما کو بتاؤں گا، لیکن نہیں بتا سکا۔ ہما کو نہیں بتا سکتا تھا، نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھ میں اس کام کی ہمت نہیں تھی، نہیں جانتا۔ اس کو بتانے کی بجائے جا کے جانماز پر بیٹھ گیا، قرآن کو کھولا۔ اس میں ایک آیت آئی جس کے پڑھنے نے ایک ٹھنڈے پانی کی طرح میرے دل کی آگ بجھا دی اور مجھے سکون ملا۔
وہ کون سی آیت تھی؟
حق وہی ہے جو تمہاری طرف آیا ہے، دل میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں لانا، ہر کوئی حق کی طرف جانے والا ہے۔ ایسا لگا جیسے قرآن میرے ساتھ باتیں کر رہا ہو۔ اچانک دل کو سکون ملا، ایسے کہ زندگی میں کبھی بھی اتنا سکون نہیں ملا تھا۔ اس دن رات تک کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ یہ احساس کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا خیال رکھ رہا ہے ایک بہت اچھا احساس تھا۔ میرا دل عشق سے لبریز ہو گیا اور عجیب سی رقت طاری ہو گئی۔ صبح تک جاگتا رہا، اپنے رب سے باتیں کی اور راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس کے بعد کوئی چیز مجھے نہیں ہلا سکتی تھی۔ جب تک زندہ رہوں گا اس رات کو نہیں بھولوں گا۔ ہاں بیٹا،
مہدی کھانے پہ رک جائیں۔ مہدی؟
ہاں،
میں نے کہا کھانے پہ رک جائیں۔
نہیں رک سکتا، ضروری کام ہے۔ बहुत जरूरी।
ये लीजिए गर्मा गर्म चाय।
बहुत शुक्रिया बेटा।
कोई बात नहीं।
शुक्रिया। पुराने जमाने में औरतें जॉब नहीं करती थी। करती थी क्या? कसम से सब कुछ ठीक ठाक रहता था।
आपकी बीवी तो मान चुकी है कि जॉब नहीं करेगी।
नहीं मानी ना। क्या बात है, सर हिला रही हो। नहीं मानी हो ना? अगर मान चुकी होती तो यूनिवर्सिटी किस लिए जाती हो?
क्या फर्क पड़ता है, बहुत सी औरतें जिन्होंने आला तालीम हासिल की लेकिन जॉब नहीं करती।
अब ये मान चुकी हैं कि जॉब नहीं करेंगी। ठीक है, मैं वाकई में इनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी बात कुछ और है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का खर्चा कौन देता है? मर्द। ये नहीं हो सकता कि मर्द बाहर जाए, मेहनत करे, गधे कितना काम करे, ये करे वो करे, पैसा कमाए, लेकिन दूसरी चीजों में दूसरे नंबर पर रहे। क्या वो कोई नौकर है?
फिलहाल आपका मसला इनकी पढ़ाई का है।
नहीं, अरे मुश्किल कोई एक दो नहीं है ना। देखिए, मैंने इनसे कहा कि तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फोन करो, मेरे साथ हमाहंग करो ताकि मैं साथ आऊं। मुझे तुम्हारा अकेले जाना अच्छा नहीं लगता।
तो क्या हर चीज तुम्हें अच्छी लगनी जरूरी है क्या?
ये देखो, हर बात पर इसी तरह बुलबुल बुलबुल बुलों की तरह जवाब देती रहती है मोहतरमा। मोहतरमा एडवाइजर पुजहंदे साहिबा, मुश्तरका इजवाजी जिंदगी का क्या मतलब है?
मतलब ये है कि कुछ चीजों को तुम बर्दाश्त करो और कुछ चीजों को मैं, लेकिन अब सब चीजें एक तरफा हैं। पहले मैंने तुम्हारे लिए काम छोड़ा, अब यूनिवर्सिटी छुड़वाने पर तुले हुए हो।
ये लीजिए, इनको संभालिए।
आप क्यों इतना इसरार कर रहे हैं कि उनके साथ रहें?
क्योंकि जमाना खराब है, ये ना भी चाहे तो लोग बुरे रास्तों की तरफ ले जाते हैं।
तो इंसान के इरादे का क्या होगा? हर वक्त तो आजादी दिल के डर से किसी को पिंजरे में नहीं बंद रखा जा सकता।
नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उसका शौहर हूँ, जो कि हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी इजाजत के बगैर अकेली कहीं जाए। यही।
कब तक?
जी
मैंने पूछा कब तक?
जब तक मेरी टांगों में ताकत रहेगी।
जब तक इसे दोबारा काम से ना निकाला जाए। देखिए, खुद एक बहुत बड़ा मसला है। आप अगर चाहें कि हर जगह अपनी बीवी के साथ रहें तो ये उसके आपके काम पर असर पड़ेगा। आप अपने काम के भी तो मालिक हो, तब भी असर पड़ेगा।
डॉक्टर साहिबा, हमें 6 महीने हुए निकाह किए, अब तक ये 2 दफा अपनी जॉब तब्दील कर चुके हैं।
माफ कीजिएगा, क्या इस 6 महीने में मेरा खर्चा तुम चला रही हो? नहीं, तुम अपना मसला बताओ। इनका मसला ये है कि नहीं चाहती कि उनके साथ रहूं। ये है तुम्हारा मसला, कहो ना।
ये मसला नहीं हो सकता, वरना आप उसके साथ शादी क्यों करती?
ये सच कह रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ रहे।
ये लीजिए, इनको संभालिए।
मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आए, मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस आए और इसकी हरकतें मेरे लिए बायस शर्म बने।
ये ऐसा क्या करते हैं?
जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। दरअसल हमारा मसला यही तो है।
हाँ मैं पागल हूँ, बिला वजह गुस्सा होता हूँ। हाँ बताओ, मैं बिला वजह गुस्सा होता हूँ। हाँ बताओ तुम।
हाँ तुम अक्सर औकात बिला वजह गुस्से होते हो, अभी इसी वक्त क्यों टेंशन में हो?
इसे देखिए, अरे मुझे गुस्सा होना चाहिए ना, क्योंकि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ लाई हो, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा?
डॉक्टर साहबा, यही चंद दिन पहले यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर मुझे लेने आए थे, सिर्फ इस बात पर कि मैं थोड़ा देर से आई, मोहतरम को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं पूरी तरह गाड़ी में बैठूं, गाड़ी चला दी, जिसकी वजह से मैं जमीन पर गिर गई। एक साहब जो गुजर रहे थे मेरी मदद की खातिर आगे बढ़े, इन्होंने वो बेइज्जती करवाई कि क्या बताऊं। लोग बीच में ना पड़ते तो साहब की पिटाई कर चुके होते, ये है इनकी बेइज्जतियां।
ओहो, परसों की ये बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। दूसरे ये कि क्या तुम उस साहब को जानती थी जो इतने गुस्से हुई?
नहीं, इस बात का क्या ताल्लुक है?
ताल्लुक ये है कि अगर तुम किसी को नहीं जानती हो तो उसकी इज्जत क्यों रखना चाहती हो? हाँ क्या है, सर बुला रही हो, मुझ पर अफसोस हो रहा है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? डॉक्टर साहबा देखिए, अगर आप किसी को नहीं जानती हैं तो क्या उसको इतनी अहमियत देंगी, उसकी इज्जत का पास करेंगी?
ठीक है, मेरे ख्याल में पहली मीटिंग में इतना काफी है।
अलबत्ता मेरे ख्याल में हमारा मसला अभी हल नहीं हुआ है।
हमें अभी बाप से बहुत काम है, एक ही मीटिंग में किसी मुश्तरका नुक्ते पर नहीं पहुँच सकते। मुझे तुम दोनों के साथ अलग अलग भी मीटिंग रखनी है, पहली मीटिंग आज ही पर रखते हैं।
नहीं आज तो नहीं, आज मुझे काम है, गाड़ी कहीं ले जानी है, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है।
तो ठीक है, आप जाएं, मैं आपकी बेगम से बात करती हूँ, इसके बाद आपके लिए खुसूसी मीटिंग रखते हैं।
तो क्या इस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आएगी?
तुम लोग किसी और दिन भी आ सकते हो।
अच्छा, मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं रुकती हूँ, तुम जाओ अपने काम निपटाओ।
आपके लिए भी एक मीटिंग रख देती हूँ और आपकी वाइफ को बता दूंगी कि आपको इत्तला दे।
तो ठीक है, मैं चलता हूँ, वापस आ जाऊंगा। याद रखना, वापस आ जाऊंगा।
کیا رخصتی کی تاریخ طے ہے؟
جی.
کب؟
گرمیوں کے اوائل میں.
میرے خیال میں اس کو حساس کیے بغیر رخصتی کی تاریخ کو تھوڑا پیچھے کر دیں.
یعنی میں نے غلطی کی ہے؟
کس چیز کی؟
یہی کہ اس کے ساتھ نکاح کیا ہے.
میں ایسا نہیں سمجھتی. یعنی فی الحال نہیں، مجھے ان سے مزید بات کرنی ہوگی، لیکن اس وقت جو چیز میں دیکھ رہی ہوں شادی سے اس میں اور بھی شدت آ جائے گی، تو شادی میں بہت بڑی غلطی ہوگی. تم فکر مت کرو، کبھی کبھی ان جیسے کیسوں میں ان کو علم نہیں ہوتا کہ غلطی پر ہیں. بات کرنے سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ بتاؤ کہ ان کے ماں باپ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں؟
نہیں، لیکن ان کے والد ان کے گھر کے دوسری طرف رہتے ہیں، مطلب اپنی فیملی کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے.
اس کی وجہ معلوم ہے؟
میرا خیال میں وہی معمول کے اختلافات جو سب گھرانوں میں ہوتے ہیں، یا شاید کوئی خاص بات ہو جو مجھے نہیں معلوم ہے.
دیکھو، تمہیں دونوں فیملیوں کو حساس کے بغیر ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے شادی کی تاریخ تھوڑی پیچھے ہو جائے. اپنی ماں سے بھی بات کرو، تاکہ ان سے کہو کہ تمہارا جہیز مکمل نہیں ہے، یا کوئی اور بہانہ لیتے آؤ.
اگر نہیں مانے تو کیا ہوگا؟
انہیں ماننا پڑے گا. دوسری صورت میں میں تمہارے والد سے کہوں گی کہ ان سے بات کرے اور شادی کی تاریخ میں تھوڑی سی تاخیر دیں. پریشان نہ ہو، مشاورت سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگلی مشترکہ میٹنگ کے لیے سیکرٹری سے ٹائم لو. سعادت صاحبہ،
جی فرمائیے.
ان کو ایک مشترکہ ٹائم دو، اور جو ان کے ساتھ تھے اس کے لیے بھی ایک الگ ٹائم رکھو.
ضرور جی.
ارے میری بیگم اب تک اندر ہے؟
نہیں، چلی گئی.
چلی گئی؟ جہاں
کام ان کا ختم ہو گیا چلی گئی.
کتنی احمق ہیں، میں نے تو کہا تھا میں جلدی آ جاؤں گا.
آواز اپنی دھیمی
کریں، دھیرے سے بات کریں. جاؤ اپنی دکان بند کرو، اس عورت کو بلاؤ، کہو مجھے اس سے کام ہے.
مہذب رہیں تھوڑا.
اٹھو میں کہہ رہا ہوں، جلدی کرو.
ابھی مریض اندر ہے، نہیں آ سکتی.
ارے ہٹو،
کہاں جانے اب.
آئیے.
میں نے نہیں کہا تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گا، اسے کیوں جانے دیا؟
اس کی وزٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا.
تم نے مفت میں اسے روکا اور میرے ساتھ نہیں جانے دیا؟ ہاں، اسے کیسی پٹی پڑھائی جو میرے لیے نہیں رکی. تم خود کو ایڈوائزر کہتی ہو؟ ہاں
ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو رک جائیے، ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ سے بات کریں گے.
جاؤ آپس میں بات کریں گے.
ڈاکٹر یہ بغیر اجازت.
باہر جائیے، باہر جائیے.
سعادت صاحبہ آپ باہر تشریف لے جائیں، میں خود حل کر لوں گی. تم اگر اب رک سکتے ہیں تو رکے، ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں. اگر نہیں رک سکتے تو جس دن آپ کو ٹائم دیا جائے اسی دن.
ارے میں کوئی گدا ہوں جو تمہارے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کروں؟ میں اس کے بعد کبھی یہاں نہیں آؤں گا، پیر نہیں رکھوں گا، یاد رکھنا.
کیا مطلب؟ اف،
سلام علیکم ابو جان.
وعلیکم السلام بیٹا.
آپ نے تو پھر جوتوں کا ڈبا اٹھایا ہوا ہے.
بیٹا گاہکوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور ہاں جب ورک شاپ چلے گی تو اس طرح سے زیادہ آسانی رہے گی.
خدا کا شکر ہے.
تمہاری ماں کی کیا خبر ہے؟ کہاں ہے؟
امی جان
آ رہی ہوں.
کیا خیر خبر ہے؟
ایک اچھی خبر ہے.
چچا کی ہے؟
ہاں.
ڈھونڈ لیا؟
تقریباً.
خدا یا تیرا شکر.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
اور ہاں امی جان، یہ ہمی چچا کی بیٹی لیلا اس وقت کتنے سال کی ہوگی؟ کس کلاس میں ہوگی؟
کیسے؟
اصل میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی اتفاق سے اسے کہیں سڑک پر میں نے دیکھ لیا تو پہچان پاؤں گا یا نہیں پہچان پاؤں گا.
میرے خیال میں مہرنوش سے ایک دو سال چھوٹی ہے.
اچھا؟
اگر صحیح طور سے اس نے پڑھائی جاری رکھی ہوگی تو اس وقت یا گیارہویں میں ہوگی یا بارہویں میں.
پڑھائی تو صحیح کی ہوگی، کیونکہ جانتا ہوں اتفاق سے بہت ہی پڑھا.
تم کہاں سے جانتے ہو؟
اس کے اسکول کے ہیڈ مسٹریس نے بتایا.
اس کا اسکول ڈھونڈ لیا تم نے؟
السلام علیکم.
خدا کا شکر ہے.
وعلیکم
السلام.
ناشتہ کر چکے؟
ظاہر ہے کر لیا، 11 بجے ہوئے.
نہیں بھائی.
نہیں بھائی. مہدی بیٹا ایک منٹ ادھر ذرا آؤ. जरा इस लड़के से बात करो।
किस बारे में?
अरे भाई उसने पढ़ाई छोड़ दी है, नकाम नकाज, 11-11 बजे तक सोता है, ऊपर से इसरार कर रहा है कि मेरे लिए रिश्ता मांगने जाए।
अच्छा?
मैं उसे कहती हूँ कि हर काम का अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा है।
तो आप उसका रिश्ता मांगने जाएं, देखें कि लड़की कौन है।
अरे मैं जाके किसका दरवाजा खटखटाऊं और क्या कहूँ कि मेरा बेटा क्या करता है। उससे कहती हूँ तो कहता है कि बहुत जल्द एक बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है मुझे, आखिर कहाँ से कैसे बात भी करो तो बुरा मान जाता है। हंस क्यों रहे हो?
अरे मैं उससे क्या कहूँ, आप रिश्ता लेके जाए, लड़की की फैमिली वाले खुद इनकार करें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका उस भी ठिकाना है।
भाई उससे थोड़ी इनकार करेंगे, मुझसे इनकार करेंगे और कहेंगे कि आप इतनी बड़ी और समझदार औरत हो कि 20 बच्चे की बातों में आ गए।
नहीं कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि हमारी बेटी की शादी का इरादा,
लड़की का शादी का इरादा नहीं है। अरे वही तो चाहती है, लड़की उसको छोड़ ही नहीं रही है, कंबल की तरह चिपक गई है, सुबह शाम उसको फोन करती रहती
है। अगर ऐसा है तो कहो कि लड़के और लड़की ने आपस में बात कर ली है।
नहीं जनाब, मैं ना तो रिश्ता मांगने जाऊंगी ना उस बच्चे को उनके जाल में फंसने दूंगी।
जाल? ये जो हालात तुम्हारी बेटी ने बनाए हैं ये खुद ही एक जाल है।
वाह भाई वाह, मेरे बच्चे ने कौन सा जाल बिछाया है?
ये सुन लेगा।
आ गया।
क्या खबर है शहजादे?
खबरें तो आपके पास हैं, क्या हुआ है, क्या है?
कुछ नहीं, फानी ने तो फोन कर कर पागल कर दिया। क्या क्या तुमने चेक ले लिया?
हाँ
देखो मैं बैंक गया था, उन्होंने बताया कि चूंकि चेक बाउंस हो गया है तो मुझे नया चेक नहीं देंगे, दोबारा इजाजत देनी पड़ेगी जिसमें 10-15 दिन लगेंगे। तो ऐसा करो तुम मेरे लिए 200 मिलियन का चेक लिखो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दूंगा, तुम्हारा चेक फानी को दे देंगे।
ठीक है, आज की तारीख का लिखूं?
फर्क नहीं पड़ता, कल की तारीख डालो ज्यादा बेहतर।
अम्मी कुछ बनाएंगे, मुझे सख्त भूख लगी।
सर ठहरो, अभी खाना तैयार हो जाएगा।
नहीं मैं रुक नहीं सकता, मुझे एक जरूरी काम पर जाना है। वर्कशॉप कब हवाले करेंगे?
इस महीने का आखिर तक उसे मोहलत मांगी है।
अच्छा
बेरान, यहाँ आके बैठो ताकि मुझे इतना दौड़ना ना पड़े।
जी जी अभी आया। ये लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, तुम आओ साथ में चलते हैं।
नहीं भाई, मुझे उस कमीने फानी को देखने का कोई शौक नहीं। हेलो कैसे हो, ठीक हो? वाकई सच कह रहे हो? कसम खाओ कि सच कह रहे हो? ठीक है, मैं बस फौरन पहुंच रहा हूं, बस फौरन पहुंच रहा हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। आज उसके पास जाने की जरूरत नहीं।
किसके पास?
फानी।
किस लिए?
देखा, हफ्ते के आखिर तक मुझे एक रकम मिलने वाली है, वही जाके फानी को दे देंगे तो वर्कशॉप बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शालची का भी पैसा वापस कर देंगे।
नहीं हो सकता मेहरान, मैं वर्कशॉप बेच चुका हूँ, 70% रकम भी एडवांस में ले चुका हूँ।
कोई बात ही नहीं है उसकी, जाके वापस कर देंगे, कहेंगे हमारा एक मसला था हल हो गया, अब वर्कशॉप को नहीं बेचना चाहते, इजाफी रकम भी मांगेंगे तो वापस दे देंगे ना।
नहीं हो सकता मेहरान।
नहीं हो सकता, सौदा हो चुका है, अब नहीं हो सकता बेटा।
जरा बताओ ये रकम तुम्हें कहाँ से मिली?
एक डील का कमीशन है, और हाँ मैं खुद आपके लिए कह रहा हूँ, वरना मेरा तो अपना कारोबार है, वर्कशॉप भी नहीं आऊँगा मैं, चाहता था वर्कशॉप आप ही के लिए रहे।
शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
मेहदी बेटा, हमीद के पास जाना हुआ तो आओ साथ चलते हैं।
लेकिन मुझे तो अभी उनका एड्रेस मिला नहीं है। ठीक है, पता मिल जाएगा तो आपको बता दूंगा। दूसरी ये कि अबूजान, हमें उनके हालात का कोई इल्म नहीं है, उनकी ज़िंदगी की भी कोई ख़बर नहीं है, शायद उनके हालात ठीक ना हो, ऐसा ना हो कि खुदा खासा वहाँ जाएँ और वो हमें देख के शर्मिंदा हो।
मैं उसका भाई हूँ, अगर उसे पता चले कि मैं जानता हूँ तो नाराज़ नहीं होगा।
लेकिन जिन हालात में हमें चचा ने अपना हिस्सा लिया और आपसे अलग हो गए, ऐसे में फितरी बात है कि अगर सारी रकम उनके हाथ से निकल चुकी होगी तो आपको देख के शर्मिंदा होंगे।
अम्मी
हाँ
चलें?
कहाँ?
कहाँ, जानती है ना मुझे क्यों तंग कर रही है।
नहीं नहीं जाना है
आपको, मेरे कसम
नहीं भाई।
क्यों नहीं?
तुम खुद जानते हो, तंग नहीं करो मुझे।
अम्मी कोई गुनाह तो नहीं ना, शादी करना चाहता हूँ।
जाओ जाके शादी करो, लेकिन मुझे नहीं आना है क्योंकि मैं अहमक नहीं हूँ, मेरी अकल इतनी कम नहीं है। मैं उनसे जाके क्या कहूँगी, क्या कहूंगी कि मेरा बेटा क्या करता है, क्या कहूंगी कि उसकी तालीम कितनी है, उसके पास क्या चीजें हैं। तुम बेवकूफ हो।
पहले की बातें थी, अब जाके उनसे कह सकते हैं जनाब आपकी क्या शुरूत है, जो कहेंगे मंजूर।
अच्छा ठीक है, जाओ मान लो, जो जाओ शादी कर लो, मुझसे काम न रखो।
नहीं जाना, आपने किसको देखा है कि बगैर माँ के रिश्ता?
तो तुम पहले लड़के बन जाओ, तुम जाके उनसे रिश्ता मांग लो, मुझे नहीं आना। मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी अकल तुम्हारे हाथ में दे दूँ। बैठो अपना नाश्ता करो।
मैं गुनाह तो नहीं कर रहा ना, शादी कर रहा हूँ, क्या 40 साल का हो जाऊँ तब ठीक रहेगा?
तुम्हारी शादी का वक्त भी आएगा बेटे, अभी नहीं। अभी नहीं हो सकता कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और जाके शादी कर लो और जाके जिंदगी बसा लो। मेहंदी को भी जरा देख लो क्या हो रहा है।
मैं महसूस करता हूँ यही मौका है।
अच्छा
हाँ,
अगर एहसास करते हो तो जाओ अपने एहसासात के पीछे, मेरे साथ बहस नहीं करो, मुझे कोई हौसला नहीं है इन बातों का।
अरे भाई मैं जो भी कहता हूँ आप अपनी बात पर अड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों।
मैं जो कुछ कहती हूँ, खुदा मुझे मौत दे ताकि तुमसे मुझे नजात मिल जाए या तुम्हें मुझसे नजात मिल जाए।
हेलो
सलाम फरहाद, आप कहाँ हैं?
घर में।
घर में तो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?
अभी अभी घर पहुंचा हूँ।
अम्मी पूछ रही थी कि यहाँ आएंगे?
नहीं यहीं रहूंगा, कल सुबह उस्ताद हमीद के लिए दरवाजा खोलना है।
और हाँ, सामान को सही तरह से समेटा?
अभी नहीं।
फरहाद जान खूब ध्यान रखना, रंग वंग ना लगे।
हाँ मेरा ध्यान है।
भूख लगे तो मोहम्मद के हाथ खाना भिजवा देती हूँ।
बाहर से कुछ खा के आऊँ और अभी सोना चाहता हूँ।
ठीक है डार्लिंग, तो अपना ख्याल रखना। अच्छा खुदाफिज।
खुदाफिज। सहर मुझे इतना ज्यादा परेशान न करो, पागल हो जाऊंगा, कुछ कर बैठूंगा।
भी बच्चों को भेज दिया है ना?
मैंने कहा ना तुम्हारी रकम का इंतजाम करके दे दूंगा, ऐसा कुछ मत करो कि मुझे मजबूरन किसी और तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करना पड़े।
फरहाद तुम जानते हो तुम्हारी बीवी को ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
देखो सहर, मैंने कहा ना कि तुम्हारी रकम दे दूंगा, अगर गुंडागर्दी का पैसा ही है।
पैसा है? अरे तुम ही तो कह रहे थे कि मेहर औरत का हक बनता है ताकि मर्द के जाने के बाद अपनी जिंदगी चला सके और गलत रास्तों की तरफ जाने पर मजबूर ना हो।
ये भत्ता है,
औरत अगर गलत रास्ते पर ना जाना चाहे तो
भत्ता नहीं लेती, जाके काम करती है।
ठहरो ठहरो ठहरो, आगे ना बढ़ो। क्या भूल गए हो कि मैं काम पर जाती थी, तुमने कहा कि काम पर जाने की जरूरत नहीं है?
उस वक्त मेरी बीवी थी, लेकिन अब तो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम जो चाहो करना जाके करो।
हाँ, डाल लेंगे, अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ लेकिन काम करने का दिल नहीं करता।
ठीक है ठीक है ठीक है, देखो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें अपनी जिंदगी चलानी है, तो ठीक है हम एक खास रकम पर समझौता कर लेते हैं, मैं हर महीने तुम्हारा खर्चा देता रहूंगा। ठीक है
फरहाद, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं जितनी रकम तुमसे मांग रही हूँ शायस्ता के हक मेहर के बराबर ही है। ये सही नहीं है कि चूंकि मैंने हक महर का तायुन नहीं किया तो तुम मुझे टिश्यू पेपर की तरह हाथ टोकरी में फेंक दो। मुझे शायस्ता के हक महर जितनी रकम चाहिए।
तो तुम्हें मुझे वक्त देना होगा।
कब तक? कोई एक टाइम मुझे दो।
नहीं मालूम, जब तक मैं अपनी रकम फरहमन से ना ले लूं तब तक।
नहीं भाई, जब तक मेरी बात का जवाब नहीं है
मुझे अगला कदम उठाने पर मजबूर ना करो। फरहाद तुम्हें याद है मुझे क्या कहते थे? कहते थे कि गाय से डरता हूँ क्योंकि उसकी अकल नहीं है लेकिन सींग है, मैं अब वही गाय हूँ तो डरो। मेरा पैसा कब दोगे? हाँ
नहीं जानता, नहीं जानता।
अरे कमीनी औरत, कितनी कमीनी है। मेरी जान छोड़, छोड़ो मेरी जान।